मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य सुमति सागर जी महाराज की, तीन कम नौ करोड़ मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। हम सभी लोग यहां इकट्ठे हुए हैं और इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि देखें किस तरह लोग अपने जीवन में संयम को अंगीकार करते हैं। हम अपने जीवन में संयम अंगीकार नहीं कर पाए, पर जो अंगीकार कर रहे हैं उनको देखने का सुख, उनको देखने का आनंद भी कम नहीं है। जैसे विवाह तो एक या दो ही लोगों का होता है, बेटे का, किसी का बेटा होगा, किसी की बिटिया होगी, और क्या है विवाह। लेकिन कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस विवाह में, सॉरी बारात आ गई, अब बारात का क्या काम उसमें। ऐसा लगने लगता है तो अब इतनी बारी बाकी लोगों का क्या काम, जिनको लेना है चुपचाप आओ पांच सात लोग, जिनको लेना वो ले, जिनको महाराज को देना उनको दो और छुट्टी करो, ऐसा मन में आ सकता है। लेकिन भैया कुछ चीजें ऐसी हैं, गुणिशु प्रमोदम, किसी के अंदर बढ़ते हुए गुणों को देखकर अगर हमारे मुख पर प्रसन्नता आती है, आह्लाद होता है, तो हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है। मुझे आज बैठे बैठे ध्यान आ रहा था, जब नैनागिर में आचार्य महाराज ने जैनेश्वरी दीक्षा दी और हम सब लोग जो है ऊपर पर्वत पर पहुंचे, तो नियम सागर जी महाराज जो हमसे बड़े हैं, उन्होंने कहा महाराज आज तो हमको दीक्षाएं देख करके ही विशुद्धि बढ़ रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। तो आचार्य श्री ने क्या कहा कि यही तो है, हम जो है परस्पर एक दूसरे साधक की साधना देख करके ही आनंदित होके अपनी कषायों को बंद करके विशुद्धि को बढ़ा करके और कितनी कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है वो तो कर्मों की निर्जरा कर ही रहा है, लेकिन मोक्ष मार्गी को देख देख करके हम अपने परिणाम सुधार लेते हैं और अपने कर्मों की निर्जरा भी कर लेते हैं। एक जगत जो बाहर दिखाई देता है जिसमें सारा कुछ हिसाब गणित से चलता है, यहां इस संसार में दो और दो चार होते हैं, चार और चार आठ होते हैं, लेकिन एक ऐसा संसार है जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ता, एक ऐसा सूक्ष्म जगत है जो हमारे सबके भीतर है, जहां क्या जुड़ता है और जहां क्या घटता है ये हमें जरूर विचार करना चाहिए। हमारे जीवन में हमने कलुषताओं को इकट्ठा किया है या हमने निर्मलताओं को इकट्ठा किया है, ये हमें देखना पड़ेगा। मैं तो चतुर्मास की उपलब्धि या वर्षावास की उपलब्धि हर जगह यही मान के चलता हूं कि किसी के भीतर अगर निर्मलताएं संचित हुई हैं तो हमारा वहां आना सार्थक हो गया, और अगर हमने अपने भीतर की मलिनताओं को ज्यों का त्यों रहने दिया उसे हटाया नहीं तो शायद हमें अभी और भी सानिध्य की आवश्यकता होगी, और हमें जब अवसर मिले तो हम सानिध्य का लाभ ना लें और बाद को फिर सोचें कि अरे हमें तो अपने जीवन को निर्मल करने का कोई अवसर ही नहीं मिला। हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन को निर्मल कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। कहना बिल्कुल अलग चीज है और अनुभव करना बिल्कुल अलग चीज है। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है, वो सोचे कि मैं नदी के किनारे जा रहा हूं, तो सोच तो सकते हैं आप कि बाजार जा रहे हैं या नदी के किनारे जा रहे हैं, लेकिन आपके चरण अगर रुके हुए हैं या आपके चरण किसी और गलत जगह पर जा रहे हैं, सिनेमा की तरफ जा रहे हैं, तो आप कहां पहुंचिएगा? सोचने से पहुंचिएगा कि मैं तो नदी किनारे सोच रहा हूं कि नदी किनारे जाऊं, लेकिन आपके चरण जहां पर हैं पहुंचेंगे वहां पर। हमें यह देखना है कि हमारा अपना जो आचरण है और हमारे अपने जो चरण हैं वो किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। भैया, अगर इसकी पहचान करना हो तो बड़े आसानी से की जा सकती है। किसी व्यक्ति को बीज के बारे में नहीं मालूम हो कि ये काहे का फूल है, ये फूलों के बीज हैं या कांटे के बीज हैं, लेकिन जब उसमें से बोने के बाद फल निकलता है तो डिक्लेयर हो जाता है, फिर नहीं छुपाया जा सकता है कि ये बीज काहे का था। अगर हमें बीज के बारे में नहीं मालूम है पर उसका फल देख करके हम मालूम कर सकते हैं कि ये बीज इस प्रकार के फल का था, इसी तरह हमारे भीतर अगर कोई साधना का बीज या हमारे भीतर कोई निर्मलता का बीज अगर गिर गया है इन दिनों में तो वो फलित होना चाहिए। आज वो बीज यहां पर फलित हुआ है। मैं पहले भी 5 महीने यहां रहा, ठंड और गर्मी के दिनों में, बारिश में नहीं रहा था, सो इस बार आचार्य महाराज के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से यहां वर्षावास भी हो गया। आचार्य महाराज के साथ भी बहुत बार, जितने बार आचार्य श्री, एकाध बार ही मुझे उनके साथ आने का अवसर नहीं मिला होगा, यहां पर आए। आचार्य श्री तो कहते हैं कि शाहपुर के लोग तो चौथे काल जैसे लोग हैं। ये आचार्य श्री के शब्द हैं शाहपुर के लिए। हमको दीदी जो यहां पर हैं, उन्होंने पिछले बार भी जो है, जब हम यहां रहे थे, हम जब भी यहां आए हैं तो हम अस्वस्थ ही आए हैं, लेकिन इन सबको जो है सेवा के लिए सब ने मिलकर के, उन्होंने सबसे अधिक, मैं तो इस मंच से कहना चाहूंगा, एक त्यागी व्रति की सेवा करना, त्यागी व्रति अगर करता है तो वो अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। पहले भी सब लोगों ने मिलकर के और अभी भी सब लोगों ने मिलकर के, और जो भी अस्वस्थ दशा में भी, वरना मैंने अपने जीवन में पहली बार इस तरह अनुभव किया कि जब मैंने, अगर इस रोग से मैं नहीं बचा तो चारों प्रकार के जीवन का, आहार का त्याग कर चुका था मैं। एक दिन इसी शाहपुर में ये स्थिति थी और आज आचार्य महाराज की कृपा से फौरन वहां से आशीर्वाद आया, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और सब लोगों की सद्भावनाएं थी, और हम जो है आज आपके सामने और दो बातें करने के लिए बैठे हुए हैं। अन्यथा किस जीव का क्या भरोसा, आयु किसकी कब निषेक समाप्त हो जाए और हम प्लानिंग बनाते रहें बहुत लंबी चौड़ी, उसमें कोई अर्थ नहीं है। आज हम देख रहे हैं जो कुछ भी यहां पर आचार्य महाराज के आने से, मैं तो बहुत छोटा हूं और अपने को छोटा ही मान के चलता हूं, जो कुछ भी शाहपुर में आप सबने किया है, अपने जो संयम ग्रहण किया है, उस सबको मैं अपना उसमें कुछ भी नहीं मानता। आचार्य श्री यहां पर आए, आचार्य श्री का आशीर्वाद किसी विद्यालय में बैठ करके आचार्य श्री ने यहां पर 5 दिन और वहीं अपन बैठे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब फलित होते हुए दिखाई पड़ रहा है सबके भीतर, व्रत नियम संयम। पीछी भैया, पीछी तो एक लोग दो लोग ने हाथ में दी थी, लेकिन मैं कर रहा था सबके, उधर दूर जो बैठा हुआ है उसके हाथ भी लगे हुए हैं। मुझे बताइएगा कि सच सच बताइएगा, क्या आपके मन में उस समय नहीं था कि मैंने भी हाथ लगा दी? और आज तो जो है, और एक और सौभाग्य मिल गया हमारे जीवन में कि सब तीनों महाराज भी पधारे, और पहले भी जब हम अस्वस्थ हुए थे तो दोनों महाराज अपने चतुर्मास के पीछे बीच में आए थे। भैया जहां जाओ वहां पर वात्सल्य की चर्चा करना कि ऐसा वात्सल्य भी हमने देखा और सबने मिलकर के और हमें उस पीछे में हाथ लगाया। संयम का उपकरण है, संयमी के हाथ में ही शोभा देता है और संयमी के हाथ से ग्रहण करने में ही शोभा उसकी होती है। पीछे के पीछे आत्म संयम या आत्म नियंत्रण की चीज है। जैसे पंडित जी कह रहे थे कि पीछे मिल गई अगर तो अब पीछे पड़ गई, अब आपके लिए मोक्ष दिलवा कहीं रहेगी, ने ले वो चाहो तो कह के लियो। ऐसा ही जो है ये पीछे इसके गुण है, बहुत लोगों ने उसकी चर्चा करी। अपन उसके पांच गुणों को जरा गौर से देखें। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पीछे के मूलाचार में पांच गुण लिखे हैं कि पीछी जो है वो धूली को ग्रहण नहीं करती है। इसमें धूली लग जाए, इसको धूली में लगा दो, जरा सा इशारा किया, ऐसा किया और धूली सब उसमें से नीचे गिर गई। बिना संतोष धन के और सब धन धूरी समान, ऐसा लिखा कि नहीं? ये किस बात का संदेश देती है कि संसार की सब चीजें धूल के समान हैं, उन सब को तुम भी जो है जो इसको ग्रहण कर लिया है तो भीतर एक क्वालिटी आ जानी चाहिए कि तुम भी जो है अब संसार की किसी चीज को ग्रहण करने की, अगर चिपक गई भाई आ गई, चिपक गई अपने उससे सामग्री तो उसको भी क्षण भर के अंदर मुनि महाराज जैसे और समुद्र जैसे होता है, उसके भीतर कोई कचरा आ जाए तो 48 मिनट के भीतर उठा करके वो और बाहर कर देते हैं। इसी तरह ये पीछे इस बात की सूचना देती है कि इस पर अगर धूल लग भी जाएगी तो विद इन मूवमेंट जो है वो धूल वहां से वो ग्रहण ही नहीं करती, वो छोड़ ही देती है, पसीना को ग्रहण नहीं करती। पसीना को क्या माना गया, पवित्र मानते हैं क्या? अपवित्र मानते हैं। पसीना अपवित्रता का प्रतीक है कि पीछे जो है अपवित्रता को ग्रहण नहीं करती। वैसे ही पीछे लेने वाला पवित्र ही होता है, वो अपवित्रताओं को ग्रहण नहीं करता है। पीछे जो है वो अत्यंत मृदु होती है, बहुत सॉफ्ट। सॉफ्टनेस और सुकुमालता, इन दोनों में फर्क है। मृदुता के मायने होता है सॉफ्टनेस और सुकुमाल के मायने है डेलिकेट। दोनों का अंतर जरा सा समझिएगा। मृदु है, इसको अगर जो है पूरा का पूरा इसमें इतना सारा वजन दिख रहा है ये सब लगा, लेकिन यहां से चींटी जा रही उसके ऊपर भी इतनी पूरी रख दो, चींटी इसके बाद भी बोझ महसूस नहीं करेगी, उसके नीचे से निकल के चली जाएगी। ये इस पीछे की इतनी मृदुता है और आंख में चली जाए। ऐसे ही जो है जैसे इस पीछे की मृदुता से किसी को कष्ट नहीं होता, ऐसे ही इस पीछे के लेने वाले से किसी को जीवन में कष्ट नहीं उत्पन्न होते हैं। ये बात जो है जिस व्यक्ति के जीवन में पीछे धारी से कोई कष्ट उत्पन्न हो तो समझना वो उसके अपने कर्म का उदय है। पीछे धारी ने उसको कभी भी कोई कष्ट पहुंचाने की चेष्टा नहीं की होगी। पीछे धारी जो है कष्ट नहीं पहुंचाता। हम अपने जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध माफ कर दिए और 101वां अपराध किया तो चक्र चल गया, तो लोगों ने कहा इतने धैर्यवान थे, और जब 100 माफ कर देते तो 100 माफ कर देते तो एक और कर देते, सो कहने लगे हम तो और कर देते, मनो उनको पाप को घड़ा भर गो सो फूट गो, अब हमारा क्या बस है उसमें। ऐसा जो है ये पीछे मृदुता का संदेश देती है, किसी भी जीव को इससे कष्ट ना पहुंचे इस बात का संदेश। और डेलिकेट के मायने केयरफुल हैंडलिंग, केयरफुल हैंडलिंग, बहुत सावधानी और बहुत सरल इसको सजगता से हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा घसड़ पसड़ कोई ऐसे नहीं लगा सकता इसको। एक बार ऐसा हुआ कि हम शुरू में बने थे, छुल्लक जी थे उस समय, तो पीछे हाथ में अब एक रेती का ढेर लगा था, उस पर बैठना था तो हमने रेती पर ऐसे जोर से लगाई। आचार्य जी देख रहे थे, ए छुल्लक जी धीरे से लगाओ, वो टूट जाएगी नीचे उसमें है? उसको ऐसे रेत पर इतने जोर से लगाने की नहीं, आराम से, केयरफुली हैंडलिंग, बहुत सजग और बहुत सावधान जो व्यक्ति है अपने जीवन में, प्राणियों के प्रति जो है जीवन में सजग और सावधान है और अपने परिणामों के प्रति सजग और सावधान है, उसका ये लक्षण है। और आखिरी बात कि ये बहुत हल्की होती है, वेटलेस, वेटलेस है, बट नॉट, हमने लिखा था कि बट नॉट हैवीनेस, भारीपन से रहित नहीं है, विदाउट हैवीनेस नहीं है वो, वेटलेस तो है, हल्की तो है बहुत, ये बहुत हल्की है पीछे, लेकिन इसको ग्रहण करने वाले के भीतर जो है हल्कापन नहीं है। इसको ग्रहण वही करेगा, अगर इसको ग्रहण करने के बाद भी धैर्य गंभीरता और हल्कापन, धैर्य और गंभीरता नहीं आती और हल्कापन रहता है, तो ये पीछी उसके हाथ में शोभा नहीं देती है। ये तो मोक्ष का मार्ग है भैया, इसको ग्रहण करने के बाद अपने परिणामों को संभालना बहुत अत्यंत आवश्यक है, किसी के जीवन पर बोझ नहीं बने। देखो अच्छा, हमें कई बार लगने लगता है कि शुरू शुरू में बहुत संकोच लगता था जब हम जाते थे, सो एक आध दो रोटी खाई, थोड़ो कछु ले लो, जल्दी से वापस आ गए, खबर पहुंच गई महाराज के पास कि जी महाराज बहुत संकोच करत। तो आचार्य जी ने हमसे पूछा ऐसे नहीं चलेगा संकोच करने से, तो हमने कहा हमें ऐसा लगता है कि जिस श्रावक वगैरह का सोचे कि समझ ले चले जा रहे हैं, इतनो ले लो। तो ऐसा ऐसा भाव आ जाता था, पर श्रावक को फिर बाद में आचार्य जी ने समझाया कि नहीं, श्रावक प्रेम और श्रद्धा से अपने यहां पर बुला रहा है, उसके ऊपर ये आहार जो है वो बोझ नहीं बनता। कोई भी चरिया साधु की बोझ मालूम नहीं पड़ती, अगर बोझ मालूम पड़ती है तो श्रद्धा और प्रेम नहीं होगा तो ही बोझ मालूम पड़ती है। जहां श्रद्धा और प्रेम है वहां पर, अरे भैया शिखर जी के पहाड़ पे एक बहन चली जाती थी अपने भैया को गोद में लिए, और एक व्यक्ति कहता है इतना बड़ा तो हो गया तुम, ये तुम्हारा भाई, और इतना बोझ जो है लेकर के तुम चली जा रही, नीचे उतार दो इसको। तो वो क्या बोलती, ए भैया बोझ मत कहो, ये बोझ थोड़ी है, हमारा भैया है तो हम इसको ले जा रहे हैं ऊपर। ठीक इसी तरह से हमारे महाराज हैं, हमारे गुरु हैं, श्रावक जो है, अरे दे करके हर्षित होना बहुत कठिन है। आहार दे करके एक ग्रास मिल गया, वो छोटे बच्चे से पूछो, बड़े लोग तो नहीं कहते, छोटे बच्चे से पूछो कि काय का दो, तो वो जानी देखत के का दो, तो पानी दो तो रोटी, एक ग्रास देने मिला, अब कहीं देखे आ रहा है भी दौड़त चले जा रहे होते, जो मिल जाए रास्ता में ले ले महाराज ने हमसे ले ले। और अगर दो मिल जाए ओखो, फिर तो आप देखो उनके गुइयों के बीच में भी सुने हैं कि हमने दो दई थी और जो भी और जो, ये क्या है बताइए, दे रहे हैं और देते देते समय भी बोझ महसूस नहीं कर रहे हैं, यही पीछी की विशेषता है। और जिन लोगों ने संयम ग्रहण किया है बहुत सावधानी रखें भैया, पब्लिक ओपिनियन में नहीं पढ़े, जनता क्या सोचती है इसके बारे में कोई भरोसा नहीं है, पब्लिक ओपिनियन में नहीं पढ़े, लोग पूछेंगे काय के दिन को लो, कोई आवश्यकता नहीं बताने की कितने दिन का लिया, आजीवन वाले ने आजीवन, जिनने अगर 27 दिन का भी लिया, किसी ने 28 दिन का भी लिया और हमसे कहा कि महाराज बस एक दो साल में वो पूरा कर लूंगा मैं, अब बस ये तो थोड़ा रख लिया है। कुछ लोगों ने इसलिए रख लिया कि जब पंचकल्याणक होंगे और माता पिता बनना पड़ेगा वो पूरो ले लाओ, सो फिर थोड़ी बन सकत माता पिता, एक दिन की छूट रख ली है और करें रहेंगे ब्रह्मचर्य से ही, लेकिन कहवे कि लाने एक दिन की छूट है, लेकिन जब माता पिता बनने का अवसर आएगा तो कह देंगे और उसके बाद पूरा ले लेंगे, पूरा तो ले ही लिया। इस तरह से भी कई लोगों ने ऐसी अपनी भावना व्यक्त की है, ऐसे निर्मल परिणाम। अगर कोई टीका टिप्पणी भी करे कर सकता है भैया, उसमें क्या देर लगती है, देखो लोमड़ी के अंगूर खट्टे, गई तो हती वे लोमड़ी अंगूर खावे है, और अपनी सहेलियों से कह के गई थी कि हम जा रहे, और जब उनको कूदी ऊपर, जब आया ही नहीं उसमें पकड़ में, सो वापिस चुपचाप लौटी, सहेलियों ने पूछी काय कैसे लगे, अरे कहने सब खट्टे हते। जो व्यक्ति ये सॉर ग्रेप्स रेजनलाइजेशन कहलाता है साइकोलॉजी में, ये जो है हमें जो चीज प्राप्त नहीं हुई उस चीज की निंदा करना बहुत आसान है, उस चीज के दोष देखना बहुत आसान है, पर उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना बहुत कठिन है। भर्तृहरि थे, भर्तृहरि साधु हो गए और साधु होकर के एक दिन अपने गांव में आए और पेड़ के नीचे जो है और लेटे हुए थे, एक पत्थर का मुड़ी सा लगा हुआ था, मुड़ी से पत्थर रखें दे, तो वहां से पानी भरने वाली माताएं लोग निकली और उनने कही कि काय जी कौन साधु आए, अरे कहने लगा अपनो भरतू आए, भरतू अब अपने गांव को हो गए ऐसा ही क्या आदमी, तो कहती अपनो भरतू आए। सो दूसरे ने कही कहने लगा देखो बन तो गए साधु, मनो मुड़ी सो नहीं छूटो, अब देखो और नहीं दिख रहा हो जे दिख रहा कि मुड़ी सो नहीं छूटो, अब सो उनने सुन लिया, उनने की बात जा बात तो सही है, कमी रह गई अपन को क्या करने, जब सब छोड़ो तो जो मुड़ी सभी छोड़ दो, पत्थर अलग कर दो। वे लोग तो सब पानी भरने चली गई और इन्होंने जो है धीरे से पत्थर एक तरफ किया, अपना हाथ लगा के लेट गए। वापिस लौटी सो फिर देखी, कहने लगे जी बदले नैया तन्नक कह दई मुड़ी से की, सो वो अलग कर दो। इतनो अहंकार है इनको। अब देखो ने मने चित्ती भी तुम्हारी पट्टी भी तुम्हारी, अब अगर हम धरे थे तो दिक्कत आती, अगर अलग करने दी तो दिक्कत। भैया जन ऐसे अज्ञानी जीव की अपेक्षा से अपने ज्ञान और संयम को जरा भी मलिन नहीं होने देना। और सबसे बड़ी चीज मुझे जो कहनी है कि जिन लोगों ने भी पीछी ली है उन्होंने अपने मन को बदला है। ये संयम हमें सिखाता है पूरे जीवन के अंत तक वो वैसा मन। आचार्य श्री कहते हैं कि हमेशा अपने दीक्षा के दिन को याद रखना, तुमने किस वैराग्य से भर करके ये पीछी और ये जैनेश्वरी दीक्षा ली थी, वो दिन याद करके। और मन जो है अगर कभी डगमगाएगा तो संभल जाएगा। ऐसे ही आज का दिन जिन जिन ने लिया है वो अपने जीवन में याद रखें कि कैसे हजारों लोग देख रहे थे और मैंने पीछी दी और पीछी ग्रहण की है। अगर कभी मन गड़बड़ाने लगे तो याद कर लेना उन क्षणों को, तो अपने आप परिणाम जो है निर्मल हो जाएंगे। भैया मैं तो आखिरी समय कोई मेरे से आखिरी समय जब मेरे प्राण निकलते हों और कोई पूछेगा कि आपका आखिरी उपदेश क्या है, तो यही कहूंगा जिसका चित्त निर्मल है वो ही पार होगा। मन की निर्मलता, आत्मा की निर्मलता ही समय सार है और कोई चीज नहीं है। ऐसा जो है निर्मल परिणाम पाने की कोशिश करना, और अगर कभी परिणाम बिगड़ने लगे, दूसरे के बिगड़ने लगे, तो उनको भी संभालने का प्रयास करना। आखिरी घटना मैं आपको सुना करके और अपनी बात पूरी करता हूं। महाराज ने तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा बोल करके दोनों मुनि महाराज ने और हमें बुद्धू ही सा बना दिया। हम तो सोच रहे थे कि थोड़ा थोड़ा बोले तो हमें कम बोलना पड़ेगा, तो महाराज ने बहुत थोड़ा संक्षेप में कह के, और महाराज हमारी हमेशा प्रशंसा करते, तो हम तो ये समझते हैं कि हम उस प्रशंसा के लायक नहीं है। मनो ये उनकी प्रशंसा है, दूसरे के प्रशंसा करने वाला तो प्रशंसनीय है ही, जो उनकी हो रही वो हो चाहे न हो। हाँ मेरे ख्याल से ये नोट करके रख दे। प्रशंसा कहते हैं कि कोई वस्तु सुंदर है या नहीं है, आपने सुंदर कहा तो आप तो सुंदर हो ही, जी तो पक्का हो गया। क्योंकि किसी को अच्छा कहना ये बहुत कठिन है, किसी को भी बुरा कह देना तो बहुत आसान है। नहीं कठिन है हर दुर्बल को धमकी देना और डराना, नहीं बहुत सरल है किसी बेकसूर पर दोष लगाना। अरे बेबस को क्या और गिराना, उसे उठाओ तो मैं जानू, तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो मैं जानू। ये मन जो है आज के दिन मन का श्रृंगार करने का ये दिवस है, और हमने अपने मन को श्रृंगार लिया। साधुता यही है कि कितनी भी मुश्किलों के बाद और हम अपने मन को बिगड़ने नहीं देते हैं। यही धैर्य हम सबके भीतर जिन्होंने संयम ग्रहण किया है उन सबके भीतर भी रहे। एक घटना है, एक साधु जी नाव में जा रहे थे, या अब नाव में बैठ करके उनको, वैसे साधु जी थे जो बैठ सकते हैं, सब प्रकार के साधु जी हैं भारत में। अब हमको साधु जी आप मानते हैं है ना, तो हम वैसे वाले हैं, हम पांव पांव चलते हैं, हैं बिना जूते के चलेंगे, जिंदगी भर पांव पांव ही चलेंगे। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कि गाड़ी वगैरह में भी चलते हैं, अब वो ठीक है। तो वो नाव में बैठे और उस पार जा रहे थे, उसी में और नौ युवक भी बैठे थे। अब नौ युवकों को क्या सूझ है, उनने कहा साधु जी को तनक चेंगाओ है, मतलब इनका मजा ले। ऐसा होता है, देखो भैया हमने तो बहुत अनुभव किया कि सीधा सच्चा आदमी होवे, जैसे कि उसमें लिखा है 16 सपनों में कि हाथी के ऊपर बंदर बैठो और वो चल कूद कर रहा हो और हाथी चुपचाप खड़ो। ऐसा ही आज की स्थिति ऐसा ही है, सीधा साधा ईमानदार होगा तो उसके ऊपर बैठ करके और उपद्रव करेंगे। साधु जी बिल्कुल सीधे साधे हैं, मैं 10-15 लड़का मिल गए, सोने 17 बातें कहना शुरू की, अरे काय को बन गए भोजनों खो बन गए ऐसा। और भी जो हमें तो कह लो नहीं आउट की भी बातें, अब भी हमें के आउट होती तो काने हती, मगर है तो वो ऐसी सब बातें उनने। अब वो चुपचाप बैठे, अब जब बहुत अति हो गई अति हो गई, उसमें से किसी एक ने अपनी चप्पल उठा करके और जैसे ही साधु के सिर पर लगाने की चेष्टा तक करी, ये अभी हो नहीं पाया, और उतने में आकाशवाणी हुई कि साधु जी, उनको तो हुई कि सावधान, और साधु जी से कहा कि साधु जी अगर आप कहो तो एक मिनट के अंदर इन सबको नाव पलट करके और डुबा सकता हूं। तब साधु जी ने अपनी साधुता नहीं छोड़ी और क्या कहा कि अरे भैया तुम कैसे आकाश से आकाशवाणी करने वाले हो, अगर तुम्हें पलटना ही है तो नाव मत पलटो, इनकी बुद्धि पलट जो जी अच्छे हो जावे, और कुछ नहीं हमें आवश्यक है। भाई हमें भी आपसे यही कहना है कि अगर जो है किसी के मन में कलुषताएं हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि वो निर्मल हो जाएं और सबका चित्त निर्मल हो, और जो संयम ग्रहण करने वाले उनकी खूब जो है, और आप सेवा करना, जिसने भी, हम तो बहुत कठिन समझते हैं इस चीज को, खांडे की धार है, जिसने गृहस्थी करी है और गृहस्थी में गृहिणी है, उसके साथ रह करके 15 दिन का संयम, 20 दिन का संयम, 28 दिन का संयम, अरे भैया सामान्य बात नहीं है, पंचम काल है, हैं? व्यक्ति को तो संपर्क न मिले तो मन खराब हो जाता, जिसको संपर्क मिला उसके बाद भी वो अपने मन को निर्मल रखेगा, ये क्या सामान्य बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों में भी पहले बहुत से लोग और भी आए हैं जिनने व्रत लिए हैं, बढ़ाते ही चले जाना, अगर किसी ने 15 का लिया तो अगले साल 16 कर लेना, अगले साल 17 कर लेना, ऐसे करके रोज संयम के दिन बढ़ते जाएं, असंयम के दिन कमती होते चले जाएं, बस इसी भावना के साथ कि मलिनताओं की कमी हो और निर्मलता सबके मन में आवे, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।